का था, रूह वही, रूह नया।
आप सुन रहे हैं कहानी किस्सा एक त्रासद फंतासी का, और इसके लेखक हैं धीरेन्द्र अस्थाना। वो एक निर्जन जगह थी जहां तूफान की तरह उन्मत्त दौड़ती राजधानी एक्सप्रेस एकाएक रुकी थी। रात के 2 बजे थे, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था, एकदम ठोस, न कोई आहट न रोशनी की कोई फांक। राजधानी के किसी डिब्बे की खिड़की से किसी संपन्न आदमी ने शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी बाहर फेंकी, तभी दिखा था दूर तक फैला बीहड़। टॉर्च की रोशनी का संतुलन बिगड़ गया, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं थरथराई और फिर बुझ गई। शायद टॉर्च मालिक का जिस्म भयातुर हो लड़खड़ाया था, यूं दोनों बातों में कोई ताल्लुक नहीं था, पर वक्त एक ही था। जिस वक्त राजधानी उस बीहड़ में अचानक रुकी थी, ठीक उसी वक्त राजधानी की एक पिछड़ी बस्ती में अपने किराए के मकान की छत पर उद्विग्न घूमते हुए एक आदमी ने अपने अवसाद के घने अंधेरे में चीत्कार करते हुए सोचा था, बस बहुत हो चुका। फिर वो अचानक थम गया था। आदमी पिछले 14 बरस से दौड़ रहा था अकेला। इन 14 बरसों में उसने खुद को थक कर गिरने से कई बार बचाया था, इस सपने के तहत कि एक दिन आएगा जब कोई और भले ही उसकी सुध ना ले, लेकिन वो खुद इस फुर्सत और साहस के बीच जरूर खड़ा होगा कि अपने पांवों के जख्मों और दिल दिमाग में उतरते सूने अंधकार के बीच एक चीख की तरह उपस्थित हो और बेरहम संबंधों के मकर जाल को छिन्न भिन्न कर दे। पर इन 14 बरसों में यह क्षण कभी नहीं आया। इस बीच उसके इस छोटे से सपने ने आघात सहते सहते किसी मरे हुए कुत्ते की तरह अपनी आंखें फाड़ दी थीं और जीभ बाहर फेंक दी थी। अपेक्षाओं की भीड़ में अकेले पड़ गए कमजोर आदमी के एकालाप की तरह वो लगातार ट्रेजिक एकांत में बदल रहा था। वो एकांत प्रिय लोगों में से नहीं था। 14 बरस पहले का उसका कॉलेज जीवन जिंदा दिली, ठहाकों और हंगामों की एक ऐसी स्मृति था जिसके सहारे उसने अब तक का समय जी जी कर फेंका था। पर अब ये स्मृति भी नष्ट हो रही थी। इस स्मृति को याद भर करने से मन तिक्त होने लगता था, जैसे शहंशाहों की तरह रहने वाले किसी आदमी को अचानक आई स्थायी गरीबी में अपना अतीत एक निर्मम मजाक सा याद आता है। वैसे ही वो अपने अतीत को याद करते ही खुद को एक विद्रूप की तरह पाने लगता था। ऐसे में आम लोगों की तरह वो अपनी पत्नी या बच्चों पर अपनी झुंझलाहट नहीं उतारता था, बल्कि उनसे छिटक कर अपनी खाट पर चुप पड़ जाता था उनकी उपस्थिति के बावजूद। ये वही दिन थे जिन दिनों उसने पाया कि वो शोर और दूसरों की उपस्थिति से कतराने लगा है, पर थमा वो तब भी नहीं, अपने में गुम चलता रहा ताकि दूसरे इस भयावह अकेलेपन और निर्मम विषाद से बच सकें। धीरे धीरे उसने पाया कि क्रमशः अकेले पड़ते जाने की प्रक्रिया अब उस बिंदु पर है जहां वो लगभग अकेला है। लोगों की बातचीत, चुहल, गीतों से दूर, उनकी नींद और सपनों से बहिष्कृत, ये रीढ़ की हड्डी को ऐंठा देने वाला एहसास था। तकलीफ से विकृत हुए चेहरे पर काबू पाते हुए उसने तब अपनी पत्नी की दुनिया पर आस बंधी निगाह दौड़ाई और लड़खड़ा गया। वो आत्मीयता और लगाव के तमाम एहसास से एकदम रीत चुकी थी। वहां सिर्फ चंद औपचारिक वाक्य भर बचे रह गए थे। ऐसा क्यों हुआ, आदमी ने चलते चलते सोचा कि अपनी अपरिहार्य मौजूदगी के बावजूद वो लोगों की दुनिया में अप्रासंगिक है। लोगों की दुनिया में अपनी जरूरत को स्वार्थी होता देख उसका मन भीतर तक रुआंसा हो आया। उसके तेज कदम सुस्त पड़ने लगे। कदमों का सुस्त पड़ना था कि पत्नी के पास सुरक्षित चंद औपचारिक वाक्यों की पूंजी भी मानो लुट गई। क्यों? उसने दुखते हुए अचरज में सोचा और बेतरह डर गया। तब पहली बार उसके कदम रुक रुक कर पड़ने लगे। कदमों के इस तरह थकते ही वो एकदम तन्हा था। ऊपर आसमान था अपने अट्ठहासों के साथ, नीचे धरती अपने रुदन को थामे। वो ना आसमान के अट्ठहास में शामिल था, न धरती के रुदन में। चीजें क्रांतिकारी छलांग वाले नियम के तहत सिरे से ही बदल गई थी। उसे लगा अब थम जाना चाहिए। इसी दौड़ का कोई अर्थ नहीं, जिसे ना कोई महसूस कर रहा हो, ना ही उसे लेकर चिंतित या आभारी हो। सब अपनी अपनी नींद में और अपने अपने सपनों में थे, उससे बेखबर, जबकि ये नींद और सपने उसकी दौड़ ने ही लोगों को सौंपे थे। वो रुका। रुकते रुकते भी उसने पूरी ईमानदारी से सोचा कि कहीं उसका विक्षोभ एक आत्महंता प्रतिशोध में तो नहीं ढल रहा। भीतर से एक रोता हुआ स्वीकार निकला, पर मैं अवश्य हूं, उसने बड़बड़ाते हुए सोचा। बस बहुत हो चुका, उसने अपने आप को सुनाया और इसके बाद वो पूरी तरह रुक गया। ये वही क्षण था जब राजधानी बीहड़ में रुक गई थी। राजधानी में जीवन क्रमशः अस्त व्यस्त हुआ। सबसे पहले बेचैन होने वाला वही शख्स था जिसकी टॉर्च की रोशनी ने बीहड़ को देखा था। वो कुछ देर ठिठका रहा, फिर उसने अपनी पत्नी को भी जगा दिया। पत्नी ने झल्ला कर कहा, रुकी है तो चल भी जाएगी, मुझे सोने दो। लेकिन जब काफी देर के बाद भी राजधानी रुकी ही रही तो उसने फिर अपनी पत्नी को जगा दिया। अब पत्नी भी आशंकित हो गई और अपना सामान संभालने लगी। इस बीच बाकी डब्बे भी बीच नींद में तड़क गए। राजधानी को रुके पर्याप्त देर हो चुकी थी। छोटे बच्चों ने रोना शुरू कर दिया था और बड़े बच्चों ने सवाल पूछने आरंभ कर दिए थे। क्या राजधानी भी रुक सकती है? क्या राजधानी के लोगों को भी लूटा जा सकता है? राजधानी बीहड़ में क्यों रुकी है? बीहड़ किसे कहते हैं? आदि आदि। स्त्रियां उबासी, आतंक और आश्चर्य के बीच थिर थीं। पुरुषों के चेहरों पर बच्चों के सवालों से उपजी झुंझलाहट और राजधानी के रुकने से पैदा हुआ क्रोध बिखरा हुआ था। किसी डब्बे में काम करने वाली सरकार की असफलता पर चर्चा गर्म हो गई थी, तो किसी में राजधानी के रुकने का रिश्ता उग्रवादी कार्रवाइयों से जोड़कर देखा जाने लगा था। काफी लोग राजधानी से बाहर आ गए थे और जुलूस की शक्ल में ड्राइवर की दिशा में बढ़ने लगे थे। राजधानी को रुके 3 घंटे हो गए थे। रात का सीना उघड़ने लगा था कि तभी इस अल सुबह एक हादसा हुआ। बीहड़ के पता नहीं किस कोने से 2-3 आदमी निकले और राजधानी से थोड़ी दूर घूमती एक युवती को घसीट ले गए। लड़की की चीख से जब तक लोग चौंके तब तक वहां कुछ नहीं था, न चीख, न युवती, न ही वे आदमी। बाहर खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। सब गिरते पड़ते राजधानी के भीतर समाने लगे। खिड़कियां और दरवाजे बंद किए जाने लगे। अपने अपने लोगों और सामान की गिनती की जाने लगी। कुछ ही देर में पूरी राजधानी दहशत की गिरफ्त में थी। माओ ने अपने बच्चे छातियों से चिपटा लिए थे। अगवा की गई युवती की बूढ़ी माँ को दिल का दौरा पड़ गया था। नवविवाहिता स्त्रियां अपने अपने पतियों से सटकर सहमी हुई कबूतरियों की तरह कांपने लगी थीं। बूढ़ों की खांसी उखड़ गई थी और अलग अलग कंपनियों के अधिकारी बड़ी बड़ी चिंताएं भूलकर अपने अपने परिवार को ढाढ़स बंधाने में जुट गए थे। राष्ट्रीय दैनिक का एक विशेष संवाददाता अपनी सीट पर धंसा सिगरेट के कश खींचता हुआ इस समस्या में मुबतला था कि कैसे वो इस एक्सक्लूसिव समाचार को फौरन से पेशतर अपने अखबार तक पहुंचाए। दहशत और अनिश्चय के 3 या 4 या 5 घंटों पर वो मन ही मन मर्म स्पर्शी रपट बुनने में तल्लीन था। अगवा युवती और उसे लेकर राजधानी की नपुंसकता पर उसने 2 बॉक्स आइटम बना भी लिए थे। अब वो तीसरे बॉक्स आइटम के लिए झलकियां देख और सोच रहा था। तभी दूसरे डिब्बे से एक आर्तनाद गूंजा। राजधानी क्योंकि भीतर ही भीतर पूरी जुड़ी हुई थी, इसलिए कुछ लोग आर्तनाद की दिशा में दौड़ पड़े। कुछ को उनकी पत्नियों ने उठने से पहले ही आंख के इशारे से रोक लिया। आर्तनाद एक अधेड़ औरत का था। उसका पति इस दहशत को झेल न पाने के कारण हार्ट अटैक से मर गया था। सुबह के 7:30 बजे थे। राजधानी की गड़बड़ी पता नहीं चल पा रही थी। ड्राइवर, टीसी और राजधानी के पुलिसकर्मी हताश और चकित थे। पुलिस को देख विशेष संवाददाता जिरह करने लगा था कि जिस वक्त लड़की का अपहरण हुआ वे क्या कर रहे थे। लोगों का गुस्सा क्रमशः एक कातर दयनीयता में बदल रहा था। सबसे पहले आदमी की मां चकित हुई। मां ने कहा, घर में आटा खत्म हो गया है। आदमी ने जवाब दिया, तो मां ने सूचना दी, तुम्हारे दोनों छोटे भाइयों को मास्टर ने स्कूल से लौटा दिया है और कहा है जब तक ड्रेस ना बन जाए स्कूल मत जाना। आदमी ने कहा, पैसे होंगे तो देखा जाएगा। उसके जवाबों को सुन पत्नी पहले तो चौंक गई, फिर खुश हुई कि आदमी सुधर रहा है। लेकिन जब वक्त गुजर जाने पर भी आदमी दफ्तर के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसे लगा कोई गड़बड़ है। उसने वजह पूछी। आदमी ने कहा, मन नहीं है। उसने फिल्म का प्रस्ताव रखा। आदमी ने खाली जेब दिखा दी। वो झल्लाकर ऊंची आवाज में बोली कि उसका जीवन नरक हो गया है। आदमी बाथरूम चला गया। बाथरूम में साबुन नहीं था। आदमी बिना साबुन के नहाने लगा। बाहर आदमी की मां के चेहरे पर कौतूहल और पत्नी के चेहरे पर एक हताश क्रोध उभर आया था। वे दोनों आदमी को लेकर किस्म किस्म की शंकाएं प्रकट करने लगी थी। न जंजीर खींची गई थी, न पटरियां उखाड़ी गई थी, न इंजन में कोई खराबी थी, न राजधानी से कोई कटकर मरा था। इसके बावजूद राजधानी रुकी हुई थी, मानो काला नाग अपने जहर से उसे नीला कर गया हो। अब तक पूरे देश में तहलका मच चुका था। समूचे देश की ट्रेन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। जिस पटरी पर राजधानी खड़ी थी उससे होकर आने और जाने वाली सभी गाड़ियां रद्द कर दी गई थी। हेलीकॉप्टरों से यात्रियों के लिए भोजन के पैकेट गिराए जा रहे थे। बिहार दो प्रदेशों की सीमा पर था, इसलिए दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री बयान जारी कर चुके थे। रेल मंत्री हेलीकॉप्टर से मुआयना कर गए थे और उन्होंने राजधानी में दहशत से मरने वाले अधेड़ आदमी के परिवार को 10,000 रुपये और गायब युवती के परिवार को 5,000 रुपये देने की घोषणा कर दी थी। राजधानी के पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था और गायब युवती को खोजने का काम केंद्रीय जांच ब्यूरो के जिम्मे आ पड़ा था। बीमारों की देखभाल के लिए डॉक्टरों का एक दल पहुंचने ही वाला है, ऐसी घोषणा भी हुई थी। प्रधानमंत्री रंग भेद की अंतर्राष्ट्रीय समस्या हल करने के लिए विदेश गए हुए थे। उनसे संपर्क साधा जा रहा था। उन्हें इस दुर्घटना में विदेशी ताकत का हाथ साफ दिखाई पड़ गया था। विरोधी दल बंद और धरनों की तैयारी में लग गए थे। चंद्रशेखर ने पदयात्रा की घोषणा कर दी थी। छात्रों ने बसें जला दी थी और कॉलेज अनिश्चित काल के लिए बंद हो गए थे। संसद और विधानसभाओं में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने की मुहिम तेजी पर थी। अविश्वास प्रस्ताव मोहल्ले के नुक्कड़ों पर आदमी के खिलाफ भी पेश किए जा रहे थे। मोहल्ले में आदमी को लेकर तरह तरह की अफवाहें जन्म ले चुकी थी। आदमी 10 दिन से न दफ्तर गया था, न पार्ट टाइम काम पर। आटे, दाल, चावल, चीनी, घी, दूध और मिट्टी के तेल को लेकर घर में हाहाकार मच गया था। मोहल्ले के दुकानदार ने उधार देने से साफ मना कर दिया था। उसे शक था कि आदमी पागल हो चुका है। कुछ बूढ़ी औरतों का ख्याल था कि आदमी पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है। कुछ बूढ़े इस बात पर सहमत थे कि यह हद दर्जे की गैर जिम्मेदारी है। अरे एक उदाहरण श्रवण कुमार का है, जिसे सोच भर लेने से आंखें मारे खुशी छलकने लगती हैं, और एक ये उदाहरण है, मन होता है कि मारे जूतों के साले की अकल ठिकाने लगा दें। अरे भिखारी और कोढ़ी तक अपने परिवार के लिए जान हलकान किए रखते हैं, और एक ये शख्स है देखो। औरतों का विश्वास था कि आदमी बैरागी हो गया है क्योंकि उसकी औरत बदचलन है। आदमी इन सब अफवाहों से निरपेक्ष अपनी खाट पर चुपचाप पड़ा रहता। उसकी आंखें दूर तक खाली हो गई थीं और चेहरे की लगातार बढ़ती दाढ़ी ने कुछ कुछ दार्शनिक की मुद्रा सौंप दी थी। बच्चों ने उसके पास जाना छोड़ दिया था। पत्नी तो उसे अपने पिछले जन्म का पाप मानने ही लगी थी। एक दिन आया जब आदमी को लेकर उड़ने वाली अफवाहों ने मकान मालिक को विचलित कर दिया। उसे आशंका हुई कि कहीं उसका किराया खतरे में ना पड़ जाए। वो आया और आदमी की पत्नी को बोल गया कि इस पहली से वो लोग कोई दूसरा मकान खोज लें या फिर उसे कम से कम 2 महीने का किराया पेशगी दे दें। पत्नी ने उस रात पहले अपने दोनों बच्चों को पीटा, फिर उन्हीं की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर देर तक रोती रही, पर आदमी के जिस्म में जुम्बिश भी नहीं हुई। राजधानी के जिस्म में जुम्बिश हो गई। देश के आला दिमाग इंजीनियरों के एक दल ने, जिसे विदेशों में प्रशिक्षित करने पर सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया था, आखिर राजधानी के इनर वर्ल्ड में हुई गड़बड़ी को खोज निकाला और ठीक 15वें रोज राजधानी ने अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ ली। पूरे देश में तहलका मच गया। जगह जगह पटाखे छोड़े गए और रोशनी की गई। 5 सितारा होटलों में जश्न मनाए गए और शराब बहाई गई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में सगर्व घोषणा की कि हम लगातार विकास के रास्तों पर बढ़ रहे हैं और हमारी टेक्नोलॉजी किसी भी देश से कमतर नहीं है। लोगों का सरकार में भरोसा फिर से कायम होने लगा। विरोधी दलों के पांवों के नीचे की जमीन कुछ और कमजोर पड़ गई। जीवन फिर दौड़ने लगा, पर आदमी अभी तक रुका हुआ था। उसके दोनों छोटे भाई खाट से जा लगे थे और मां का दमा उखड़ आया था। पत्नी के विरोध करने की सारी ताकत पेट की भूख ने सोख ली थी और आखिर उसने तमाम बातें अपने मायके लिख भेजी थी। अब वो इंतजार में पथरा रही थी। आदमी तो पहले से ही पथराया हुआ था। जिस रोज राजधानी चली, उसी रोज आदमी का 4 वर्षीय बेटा डरते डरते उसके पास आया और उसके सूखे चेहरे पर हाथ फिराते हुए बोला, पापा आप नाराज हो। जैसे सुर्ख तवे पर पानी की बूंद छन से बजी हो। आदमी ने अपने बेटे को लपक कर छाती में छुपा लिया और फिर गूंजा उसका आर्तनाद, ठीक वैसे जैसे राजधानी ने चलने से पहले अपनी सीटी से पूरे बीहड़ को गूंजा दिया था। वो धीरे से उठा और बेटे के गाल थपथपाकर घर से बाहर निकल गया। बेटे की आंखें चमकने लगीं।